مَتِ کہے اے مومنو اے ساتویں پہر کی بھی تک اب کہوں پہر آٹھواں تاکہ سنو صفت تاکہ سنو. اب جو وانی کیا ہے, کیوں پڑھنی چاہیے, کیا لاب ہے, یہ آٹھویں پکرن کی پہلی سٹارٹنگ میں چھپی آتی ہے. اب کہوں پہر آٹھواں شری راج پوڑے پلنگ پر بانی دھام دھنی کی گرجت سب اوپر پرانوں کے ادھر. آتم سنبندی والا شندر صاحب جی, اب اس آٹھویں پہر میں آپ حق شری راج جی مہاراج وید دھام کے دلہا شری پران ناتھ جی مہاراج شری بنگلہ جی میں براجمان ہیں اور سب مومن بیٹھے چرچا پراتہ تین سے چھ بجے بھی ہو گیا. آٹھواں پہر مارننگ تین بجے سے چھ بجے ہوتا ہے اور ساتویں پہر تک چرچا برابر چلتی ہی چلتی ہے. چھ چھ کلاک, تین تین کلاک سے کم تو کبھی رات کو چرچا ہوتی ہی نہیں تھی, چار ساڑھے چار کبھی چھ کلاک بھی بیت جاتے تھے. اب اس بنگلہ جی میں مومن کس طرح سے وانی کا درد لے کے لگے ہوئے ہیں. واری والے گاوت, جیسے ہی سوامی جی پلنگ پر گئے تین بجے اٹھ کے تو اپنے دھنی کو رجھانے کے لیے ترت واری والے, چودہ واری والے بنے ہوئے تھے, چودہ مطلب گروپ تھے جو سمے سمے پر وانی گا کر سوامی جی کو رجھایا کرتے تھے. پھرتی چوکی پر اپنی اپنی واری سے جن کی آوے سو گاوہی رسنا میٹھی کر. کون سی وانی گاتے ہیں؟ اپنے وہی, کوئی بھجن بھی سندر ساتھ بناتا تھا یا غزل بناتا تھا تو کیول وہی شبد جو وانی میں چرچا سنی اور ترت اس کو اپنے بھاؤ میں پرگٹ کیا. وانی دھام دھنی کی اے چودے طبک حیات, یہ وانی جو پرم دھام کی ہے اس سے سارے سنسار کو سب سے بڑا جو ہے پروفٹ نفع کیا ملنے والا ہے کہ آج دن تک سندر شاہ جی کروڑوں بار جب سے اکشر ہے تبھی سے یہ برمانڈ بنتے ہیں اور مٹتے ہیں, کیونکہ ان کے حکم سے چلتے ہیں, ان کی پرکیتی سے چلتے ہیں. اس لیے سوامی جی نے کہا مایا آد انادی سے, جب سے اکشر میں ان کا کام ہی ہے حکم دے کے برمانڈ بنانا. کروڑوں اربوں برمانڈ بنے, بن کے مٹ گئے پر کوئی اکھنڈ نہیں ہوا اس وانی کی برکت سے. اے وانی یدی سنسار میں نج بدھ کی نہ آتی تو نہیں ہونا تھا. ماسولوں کے بھی راج جی مہاراج آ گئے تو برمانڈ اکھنڈ ہو جاتا. برج میں آئے تھے کیوں نہیں برمانڈ اکھنڈ گئے, راج جی آئے تھے نا, نہیں آئے تو کیا چیز نہیں تھی, اے وانی نہیں تھی. اتنا اس وانی کا اتر آنا, کیوں اس وانی میں کیا آ گیا, کل پرم دھام آ گیا. شبداتیت آئے شبد میں, ان کی کل لیلا آ گئی, کل پرم دھام آ گیا, پچیس پکش آ گئے, اکشر کے بھید کھل گئے, راجیہ کی واحدت خلوت حقیقت اور مر. اس لیے اے وانی جو ہے اس کے آ جانے سے, اس کی شکتی سے جو ہے سارا برمانڈ بھی اکھنڈ ہوگا. پہچان بھائی نہ کاہو کو, سوامی جی کہتے ہیں اتنے سال سے, کیونکہ سو سال سے تو اوپر ہو ہی گئے سوامی, پہلے ستگرو شری دھنی دیو چند جی کے تن میں اور پھر تھوڑا اونچا ساؤنڈ رکھو. پہچان بھائی نہ کاہو کو, سوامی جی کہتے ہیں اور بھی لوگ بیٹھ کے, جیو سرشٹی بھی تین ہزار تھی, ایشوری سرشٹی بھی پندرہ سو تھی, برہم سرشٹی فقط پانچ سو تھی. تو سوامی جی کیا کہہ رہے ہیں, پہچان بھائی نہ کاہو کو. باقی جو لوگ جیو اور عام آتے تھے جہاں نو بجے پرشاد ملا گھروں کو بھاگ کے, سوامی جی کہتے ہیں کوئی اس وانی کو کون پہچانے گا. بھلے آپ ریڈیو پہ روز جاؤ, سب کو پمفلیٹس باغ دو, کتابیں دے دو اور بھی لٹریچر دے دو, پر اس سے کسی کو پہچان پڑھنے سے نہیں ہونے والی, क्योंकि पढ़ने से अगर पहचान होनी होती तो गीता में, भागवत में, वेदों में अक्षातीत उत्तम पुरुष तो लिखा ही है, तो फिर आज दिन तक क्यों नहीं किसी ने उसको पहचाना। रूप ये हयाते हो जा, जो परम धाम की आत्मा है वो वाणी को यदि पढ़ेगी तो उस समय क्या होगा, बस मचल उठेगी एकदम कि रू जो है इस मिथ्या माया को छोड़कर अपने राज्य महाराज के चरणों में जो लगेगी, भले किसी भी तन में साक्षात भी राज्य महाराज आके बैठ जाएं तो राज्य की शक्ल से कोई नहीं किसी के पीछे शक्लें देख करके चलता। ये वाणी सुन के जो रूहें हैं, स्वामी जी कहते हैं मेरी जो आत्माएं परम धाम की आई हुई हैं वो माया से यदि निकलेंगी और अखंड धाम को याद करेंगी और पारातम में जाएंगी तो किसके बल से, इस वाणी से। इस वाणी के बिना दुनिया में हमारा कोई नहीं है, क्योंकि इसीलिए स्वामी जी ने सिंहासन पे बिठाया कि आदमी के ऊपर वो कभी विश्वास नहीं आ सकता, कहीं ना कहीं शरीर इधर का है, कमी आ सकती है, अवगुण आ सकते हैं, लेकिन वाणी इसमें तो कोई अवगुण नहीं है। ये तो सब संशय मिटाकर, अवगुणों को हटाकर हकीकत की पहचान कराती है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं पहचान भई ना काहू को, रूप ये हयाती हो जाती है। जो आत्म है परम धाम की वो सुन लेने के बाद तो समझ लो वो अखंड हो गई। अखंड क्या मतलब, संसार में रहते हुए भी दृष्टि फिर कहाँ लग जाएगी, क्या लेना देना, बहुत हो गया, ये किसने कराया, इस राज्य की याद कौन दिलाता है, उस रूप की पहचान कौन कराता है, परात्म को कौन जगाते, ये वाणी से ही होने वाला है। आज लो इन इंड में कभू काहू सुनी न कान, के इस ब्रह्मांड में भी स्वामी जी कहते हैं आज दिन तक किसी ने ये वाणी सुनी नहीं, क्योंकि किसी ने आज दिन तक सुनाई ही नहीं, तो दुनिया वाले सुनते कहां से। कई हुए इंड कई हो वही, पर काहू ना बोए पहचान, के करोड़ों ब्रह्मांड पहले हो गए और इसके इस ब्रह्मांड से भी बाद में जब प्रलय होगा फिर भी होते रहेंगे, पर ये वाणी किसी को नसीब ना हुई थी और ना फिर और किसी ब्रह्मांड में होगी, ये तो इसी ब्रह्मांड में, क्योंकि ये तीनों ब्रह्मांड जो हुए अब ऐसे हुए ना हो सी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई, और इसमें तो पूर्ण पांचों शक्तियों की हकी सूरत की जब लीला हुई है, इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि ये वाणी किसी ने कौन सुनता, कहां से ला के देता, आई है रूहों के वास्ते। अब और ध्यान के साथ, ए वाणी ए सुनने की ताकत त्रैगुण को ना होए, स्वामी जी कहते हैं भले इस संसार में चर्चा हो रही है, वाणी गर्जना कर रही है, पर हुक्म के अधीन त्रैगुण बैठे हैं, वो आके साक्षात सुंदर साथ की तरह बैठ के चर्चा सुन सकते नहीं, उनकी ताकत नहीं। कहते हैं तो मोमिनों के वास्ते सिर्फ इस संसार में लाना पड़ा, क्योंकि इंद्रावती पहले दिन ही अवसे में राजी से लड़ उठी कि धनी नहीं कहवानी, माया मा आवानी, तुम परम धाम के सारे राज अपनी हकीकत वो खिलवत के सारे भेद इस मर्दा दुनिया में खोलना चाहते हो, कुछ तो सोचो। राज्य में रह कहते क्या करो, ब्रिज में मैं तुम्हारे साथ आया, उल्टा तुमने मेरे ऊपर आरोप लगाए, तुम नर्लज हो, बेशरम हो, कामी हो, ये है वो, मैं ही तो था। कहते रास में आए फिर तुमने नहीं पहचान कराई, तो अगर मेरी शक्ल से ही किसी ने देख के पहचानना होता तो ब्रिज में मुझे पहचान जाते और वे रास में पहचान जाते, देखा कि मेरी मिथ्या शक्ल को देख के कोई मेरी पहचान करेगा नहीं, मेरी वाणी ही इनको पहचान कराएगी कि ये वाणी बोलने वाली शक्ति कौन है। ए सुनने की ताकत त्रैगुण को ना होए, और नाम किन के लियू इन उपरांत सोए, के स्वामी जी कहते हैं सुंदर साहब जी जब ब्रह्मा विष्णु महेश, अब सुनो पूछो क्यों, क्योंकि उनके पास बुद्धि कौन सी है, ये अपरा है, हेयर इज द प्रॉब्लम, वरना कोई संसार में अपना बुरा नहीं चाहता, इस संसार में बुद्धि कौन सी है, भ्रांति वाली, संशय वाली जो है, और इसलिए इससे ज्यादा फिर और बात किसकी कही जाए, जब त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को आज दिन तक इस ज्ञान का नहीं पता चला, क्यों? अब कोई कह सकता है वाह भाई वाह, जो हमारे आदिनयन जी के पास और त्रिदेवाओं के पास वाणी नहीं, तुम्हारे पास कहाँ के तुम बड़े हो गए? नहीं, हम नहीं बड़े हो गए, क्योंकि ये वाणी इस ब्रह्मांड में कभी आई नहीं कलयुग से पहले, और इसीलिए तो कलयुग की महिमा इतनी बड़ी भारी संसार के ग्रंथों में क्यों लिखी है कि जैसा 28वां कलयुग आएगा ऐसा कोई समय ना गुजरा है और ना फिर गुजरने वाला है। इसका कि ये परम धाम की वाणी दुनिया निराकार से आगे एक शब्द नहीं बोलती, और ये यहाँ से लेके क्षर, निराकार, तीन पार, के पार, भी पार, अखंड परम धाम का वर्णन जो है, ये कौन इसको कह सकता था? दुनिया तो एक बूंद नहीं ले सकती, लेकिन सोरा ससागर रेलत कोई ना धरत कान। कि स्वामी जी कहते संसार में मैं खुद आकर और मेरे मोमिन जो है सागर की तरह से बाहर है, लेकिन कोई दुनिया वाले इस पर कान ही नहीं रखना चाहते। क्यों? वो कहते पता नहीं यार कहाँ की बातें करते, ना तो कोई देवी की बात सुनाते हैं, ना कोई हनुमान की बात सुनाते हैं, ना कोई राम की बात सुनाते हैं, ना ये कृष्ण की बात सुनाते हैं। ये तो एकदम ही वहां लग पड़ते, हमारी तो वही समझ में आया नहीं। क्यों नहीं आया? उनके पास अभी परा शक्ति जागृत बुद्ध नहीं है। नहीं तो सुंदर साहब जी हिसाब लगा के कभी दिल में एकांत में बैठ के देखो, आदि ने ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि मुनि जन खोज खोज हमें क्यों मिल गया? हमने बोलो क्या तपस्या की है, क्या हम योग साधना किया, क्या कष्ट राज्य के वास्ते उठाया और कुछ किया ना? अगर हमारे तन में वो निस्बत वो आत्म ना आई होती तो कभी भी ये शब्द हमें भी सुनने को नसीब ना होते। क्यों सुन रहे हैं बोलो? क्या हमने अच्छे कर्म किए, क्या तपस्या की है, क्या कभी बैठ के शास्त्रों को खोला हो या कभी इस चीज को खोला? नहीं। ये पहचान है कि अगर हमारे अंदर राज्य की आत्म ना होती तो कभी भी हमें ये वाणी सुनने को क्या नसीब भी ना होती। सोरा ससागर रे लत कोई ना धरत कान, एक संयो की रूपी वही और काहो ना पहचान। आत्माएं भी क्यों बैठ के सुनती? स्वामी जी उस समय मोमिन बैठे होते हैं सारी सारी रात, 8 साल तक वो मोमिन नहीं सोए, किसी वक्त कमर सीधी की या नहीं की। क्यों? उनको पता है कि यह वाणी क्या है, उनको दर्द है कि इसके बिना अब हम परम धाम नहीं पहुंच सकते। इस वास्ते जो है रूम मोमिन जो है वो बैठे जो है पी रहे हैं। क्यों? अब ध्यान के साथ इसमें क्या है, क्यों पढ़े, क्यों सुने? कैसी जिक्र होता है इस वाणी में, किसका जिक्र होता है इस वाणी के अंदर और संसार के ग्रंथों के अंदर? डिफरेंस तोल रहे हैं स्वामी जी कि दुनिया के ग्रंथों के अंदर कर्म कांड है, उपासना है, और स्वर्ग वैकुंठ और निराकार से आगे का ज्ञान नहीं, और इस वाणी में एकदामी अक्षर से परे अक्षर और अक्षर से फिर परे अक्षरा, तीत के 25 पक्ष के बिना कोई और बात ही नहीं होती। परम धाम क्या है, क्या कोई ग्रंथ बताए? तब पता चले कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें रखा क्या है, क्यों इसको पढ़ा जाए, क्यों टाइम वेस्ट किया जाए। स्वामी जी कहते हैं उठाओ और दुनिया के ग्रंथ उठाओ तोलो, इतना ही तो सब ने कह के रख दिया कि उत्तम पुरुष है, लेकिन घटाया कहाँ? शरीरों में घटाए बैठे, को विष्णु को बनाए बैठे, को किसी को बनाए बैठे। क्या आज दिन तक किसी ने आत्मिक लेके क्या क्लैरिफिकेशन उसका किया? किसी ने नहीं। कैसी जिक्र होता है, ध्यान दो, कैसा जिक्र है, किसका जिक्र है, और किन ठौर पहुंचत। इस वाणी से हम कहाँ पहुंच जाते हैं? परम धाम। ये वाणी हमको माया से हटा के, सत झूठ के भेद बताकर, मिथ्या और सत की पहचान करा करके वहां पहुंचा रही है जहां परम धाम में जागृत अवस्था में अक्षर ब्रह्म भी पहुंचता और हम सपने के जीवड़े, ये राज्य की शक्ति है इस वाणी के अंदर के परम धाम में सतंग स्वयं पूर्ण ब्रह्म का, जिसको पूर्णदा पूर्णदेम का है, वो नहीं जानता कि रंग महल में क्या लीला होती है। और वो कहते हैं क्यों लाया, इसलिए कि जब तक मेरी आत्माएं इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगी, मेरे हाथ में कोई भी वस्तु है, जब तक मुझे कोई इसके मुकाबले में सुपीरियर से सुपीरियर नहीं देगा, तो इसको मैं कैसे छोड़ूं। इसलिए कहते हैं कि संसार के लोग, भाई हर एक को अपना धर्म प्यारा है, हर एक को अपना इष्ट अच्छा लगता है, हर एक को अपना गुरु कौन किसको छोटा लगता है। पर स्वामी जी कहते हैं इस वाणी से ही तो तुलना की जाएगी, फिर दुनिया को पता चलेगा कि ओहो हमारे गुरु भी आज दिन तक निराकार से आगे नहीं ज्ञान बता सके, और ग्रंथ भी नहीं बता सके, और यहाँ के देवी देवता भी नहीं बता सके। क्यों? इन आल का रिजल्ट क्या मेन आता है कि सबके पास अपराशक्ति थी, मिथ्या जगत का ज्ञान था। इसलिए जो है कोई वर्णन करता तो क्या करता, कहाँ से करता, किस शक्ति से करता। अब ये किसकी शक्ति से आई है, किसी व्यक्ति की शक्ति से नहीं आई, किसी देवी देवता ने नहीं लाया, कोई मोमन ने लाया, धनी जी लाए हैं दान से। आप श्रीराज जी महाराज पोते यहाँ आकर के अपने मुखारबिंद से, ये उनके मुखारबिंद की वाणी है जिन्होंने आकर के जो है ये सारे भेद यहाँ खोले, इसलिए इसके अंदर जो है इतना भी शक बाकी नहीं रह सकता। कहते हैं हर तरह से तुलना करके मेरे मोमिन भी जो है कितने कितने बड़े सेठ, और भीम भाई श्याम भट्ट वेदांत आचार्य सूरत के गद्दी के जो मालिक थे, और उधर वल्लभाचार्य के आचार्य, बड़े बड़े आचार्य उठ करके स्वामी जी के पीछे चल दिए और चरणों में गिर गए कि आज जिनको जो सोचते हैं और जो अहम के अंदर रहते हैं वो नहीं ले सकते कुछ भी, कि भाई ये चीज़ क्या है, क्या ये किसी व्यक्ति की है, या ये किसी धर्म की है, या किसी व्यक्ति के उस पूजन करना, ना ना, इन सब झमेलों से परे ले जाने वाला ज्ञान उस परम धाम का है जहाँ तत्व सबका एक है और लीला आनंद ही आनंद की है। कैसी जिक्र होत है किन ठौर पहुंचत, क्या नफा होत है ए पहुंचावे कित, कि इस वाणी से अब संसारिक, क्योंकि सबसे पहले लोग संसार में अपना नफा सोचते हैं। कई धर्म भी लोग एडॉप्ट करते हैं, यार इस धर्म में मिनिस्टर जाते हैं, इस धर्म में बड़े बड़े चेयरमैन जाते हैं, अपना क्या अपने भी मंत्र लेकर के घुस जाते हैं, तो उससे चेयरमैन से परिचय हो जाएगा, मिनिस्टर से मुलाकात होगी और संसार का सीधा उल्लू हम कर लेंगे। स्वामी जी कहते हैं ऐसे भी लोग हैं जो घुसते पर यहाँ घुस के भी क्या ले जाएंगे, यहाँ घुस के कोई लेगा तो लेगा क्या, यहाँ तो वही घुसेगा जिसको अपनी आत्म का पेन होगा, दर्द होगा। और यह दुनिया के धंधे भी, अब ध्यान के साथ, वहां तो लोग आकर के दूसरों की हेल्प से काम करते हैं, तो यहाँ समझी कहते हैं कि इस वाणी के लेने से जब आदमी अक्षातीत पार ब्रह्म से सन्मंद जोड़ ले कि वही मेरा धाम का धनी है, तो फिर जरा बुद्धि से सोचो क्या देंगे दुनिया वाले जो अक्षातीत हमें खिंड के अंदर जो है कर देगा। राजा राम और झांझन भाई, एक फैक्ट्री थी, जब उसने चाबियां ही समर्पित कर दी कि बस धनी माया में आके ये लड़की ली है, ये लड़का है, ये बीवी है, और ये लो महाराज खजाने की चाबियां हमें तो लेके चलो। तब समझने क्या क्या, ला भाई दे दी, अब जा, अब हम हुक्म देते हैं, वाणी को याद रखना और कारखाने चला, घर परिवार को निभा, लेकिन बाकी सब का सब सुंदर साथ की सेवा के लिए भेजना, ठीक है। धनी आपका हुक्म है तो हम हैं, धनी हुक्म दे रहे हैं तो फिर कौन जिम्मेवारी लेगा सारे, हाँ। तब ऐसा 15 साल तक 5000 सुंदर साथ की सेवा, कुल खाली रोटी नहीं, कपड़ा जो व्यवहार जरूरियात जीवन की एवरीथिंग कंबल वस्त्र भूषण सब कौन भेजता था? वो राजा राम झंझन भाई मेड़ते के रहने वाले जिनको हुक्म दे के कहा कि भाई संसार है, संसार में संसार का काम तो संसार से चलेगा, लेकिन वो धनी की कृपा जब हो जाती है तो क्या समझते हो कि यहाँ फिर दुख रहने वाले हैं? अगर यहाँ संसार के देवी देवताओं की जरा सा कृपा हो जाती है और आशीर्वाद मिल जाता है तथास्तु कर देते हैं, और जिन मोमनों को चरणों में अक्षरातीत ले लेते हैं तो स्वामी जी कहते हैं वो ये कभी ना सोचे कि हम संसार में दुखी हो जाएंगे या फिर हमें किसी प्रकार का कष्ट होगा। ए मेहर किन करी ए हुई किन ऊपर, कितना देखो लुत्फ लेने वाली वाणी है। ए मेहर किन करी, पहले तो सोचो किसने करी है और हुई किन ऊपर। अगर राज्य महाराज ये मेहर तो अक्षातीत की है और हुई किन के वास्ते, आत्माओं के लिए। अगर यदि हमारे अंदर आज आत्म ना होती, अब मुख से बोलो क्या ये नसीब हमें होता? ये है स्वामी जी कहते चारों तरफ से ठोक बजा के फिर निर्णय लो कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और ये ज्ञान का पता जाओ और जाते क्यों नहीं, सारी दुनिया में घूमते हो, लाके दो एक शब्द भी पार ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उसके धाम के कितने पक्ष हैं ये वाणी बताएगी। कि पक्ष का मतलब क्या होता है, कई सुंदर साथ पक्ष भी नहीं जानते। जैसे एक इंडिया मुल्क है ना, उसमें एक बॉम्बे है, एक कलकत्ता है, एक दिल्ली है, इस तरह से परम धाम में 25 ठिकाने हैं। धाम तालाब कुंजवन सोहे मानक नहरे बानकी जोहे पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए एम पुखराज जमुना जी लइए, ये नौ बनते हैं। आठ सागर आठ जमी 25 पक्ष हैं। अब आप घबराएंगे जी ये क्या है, हमें तो जानते नहीं, इसीलिए तो जून में बुला रहा हूँ। ये वहाँ 25 पक्ष ही आपको घुमाएंगे कि ये कहाँ है, वहाँ फिर किस किस दिन राज्य में राज जाते हैं और क्या क्या लीला होती है। ये सब वो चितवन के अंदर, क्योंकि स्वामी जी 12 से 3 बजे के पीरियड में केवल परम धाम के रस के बिना और कोई चर्चा नहीं सुनाते थे। अब ध्यान के साथ, किन बरकते आई इता कोई पावे ना पटंतर। एक तो भेजी किसने, मेहर करी किसने, मेहर हुई किन के ऊपर, और फिर किसकी कृपा से यहाँ तक पहुँचा। स्वामी जी कहते हैं इतना भेद भी दुनिया इस वाणी सुन के नहीं पहचान सकते। वो कहते और कुछ भी ना करो, इतना ही भेद जिसको पता चल जाएगा, जो पावे ए पटंतर इसकी रियलिटी को कोई जान जाएगा, ताकि पालना वृथा जाए। किसने भेजा, अक्षरातीत ने भेजा। किसके वास्ते आई, ब्रह्म सृष्टि के लिए आई। लेके कौन आया, श्यामर। कहते ये तीन चीजों आप पकड़ लो तो थी क्यों, कि यदि मैं राज्य महाराज की अंगना ना होती, मेरे अंदर परम धाम की आत्म ना होती, तो कभी भी ये वाणी मिलती ना। और लाने वाला भी कौन है, श्री राज्य महाराज। और किन के अंदर बैठ के कहलवा रहे हैं, जो हमारे सुभान है, जिनके हम अंग हैं श्यामा। अब स्वामी जी कहते हैं इतना ही जिसको ज्ञान हो जाए कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ, मेरे धनी अक्षातीत हैं, श्यामा जी के हम अंग हैं, तो बोलो क्या उसका जीवन का एक पल भी वृथा जाएगा। यदि इतना ही भाव अपने हृदय में रखता है कि अपनो धनी श्री श्यामा श्याम और अपना वासा बस थी गया, और करना क्या। कहते इतना भी जिसके हृदय में भेद का पता चल जाता है तो बोलो मिथ्या जगत से हट गए कि नहीं, बोलो यहाँ से हट के राज्य के चरणों में ध्यान लग गया कि नहीं लग गया। तब तक बस विश्वास है, जितने दिन राज्य रखेंगे ओके, उसके बाद सुरता कहाँ रहेगी, चिंतन कहाँ रहेगा परम धाम का। सो इन रस में झीलते, अब जिसको इसका भेद पता चल जाएगा तो वो किस में झीलेगा 24 घंटे? नहाना मतलब रमेगा, इसी के अंदर गोते लगाएगा, वो ब्रह्म सृष्टि। फिर संसार के नावल पढ़ना और ग्रंथ पढ़ना और टाइम, जितना तो संसार के काम काज के लिए ठीक है, जो फालतू में टाइम होता है उसको जो है वो मोमिन जो अर्श के रहने वाले हैं वो कभी भी व्यथा नहीं जाने देंगे, उसका पूरा पूरा जो है वो लाभ लेंगे। सो इन रस में झीलते कौन? जो परम धाम की आत्मा है वो इससे ही इस रस को, इस अखंड को, यहाँ धरती पर बैठ के उस अर्श के अखजाना, ये अर्श का रस जो है ये पीते हैं। ताको और कछु ना सुहाए, उनको और कुछ भी अच्छा लगेगा ही नहीं। और दुनिया वालों को एक होटल, दूसरा हॉस्पिटल, तीसरा 6-6 रात को भी जो है 12 जाके मोटल देखने, उनको दुनिया की माया के बिना और कुछ अच्छा नहीं लगता। और जो मोमिन है उनको वाणी के बिना और कुछ फर्क इतना हो जाता है इस वाणी से, क्योंकि सत्य और असत्य का, झूठ और मिथ्या जो है इसका और अखंड का पता चलने के बाद कौन आदमी है। किसी के आदमी मानो काले पत्थर है और वो समझ बैठा है यही है। अब जब पहचान हो जाए, अरे बाबा ये काले पत्थर हैं, ये डायमंड है, कितनी देर रखेगा उस काले पत्थरों को? अरे यार भूल हो गई यार, हमने समझा यही डायमंड था। तो दुनिया का दोष नहीं, ये मत सोचो कि भाई कोई अपना भला नहीं। एवरीवन अकल रखता है, समझता है, लेकिन जब तक ये ज्ञान नहीं था तो स्वामी जी कहते हैं सुंदर सात आत्माएं भी जो जगी तो किससे जगी? इस वाणी से ही तो जगी, नहीं तो शक्ल देख के थोड़ा कोई एक दूसरे की वो पहचान जाता है। इसलिए जो है अब वो मोमिन जो है जहाँ वाणी होगी वो क्यों भाग भाग के आएंगे और दूसरा कोई नहीं आएगा? ए बैठत ढेग आए के, स्वामी जी कहते हैं जब भी हम चर्चा सुनानी शुरू करते हैं मोमिन भाग के आ जाते हैं, और ईश्वरी पीठ चुराती है और जीव सो ही जाते हैं। तीनों की स्टेज है जुदा जुदा, और जो मोमिन है आशक हैं जैसे भागेंगे, जरा चर्चा की बात शुरू हुई पड़ाक से आ गए, अरे भैया पहले चले गए, एक चौपाई भी निकल गई तो लिंक कहाँ से पकड़ेंगे? वो आकर के पहले ढिगने जीक बैठ जाते हैं। ए बैठते ढिग आए के, और फिर धरे सुनने को कान, एकाग्र चेतों के बैठते हैं कि कोई ऐसा भेद स्वामी जी आज नया ना बता दें, अगर इधर उधर ध्यान किया तो फिर बात निकल जाएगी। हो तो ध्यान के साथ स्वामी जी कहते हैं इतना सुनने से फिर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं होती तब तक आदमी कभी भी किसी पर यकीन करता नहीं, और जब तक यकीन नहीं है फिर आगे लाभ नहीं मिलेगा। तो स्वामी जी कहते हैं इस वाणी के होने से होता क्या है? होत पहचान रूह की, सबसे पहले इस वाणी के सुनने से पहले क्या पहचान होती है कि डेफिनेट मेरे अंदर आत्मा है, यदि ना होती तो ये मुझे कभी ना मिलता। अब मिला है तो वो दर्द भी जागृत होता है, भाई सारे काम बाद में और चर्चा सुनो। इस वास्ते जो है मोमिन भी चर्चा क्यों सुनते? क्योंकि उनको आत्म की पहचान इस वाणी से हो गई है, इसलिए वो एक पल के लिए भी वाणी से जुदा नहीं होते। बढ़त जात ईमान, फिर जैसे जैसे वाणी सुनते हैं और तैसे तैसे ही ईमान यकीन बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे यकीन बढ़ता जाता है तैसे तैसे वो राज्य के नजीक होता जाता है। इस वाणी की ये कृपा है। सीढ़ी ब सीढ़ी अब तोलते चलिए, अब और तरह से समझ लेंगे। ए वाणी इन धाम की ले बिठावत निज धाम, ये समझी कहते हैं सुंदर साहब जी ये वो ज्ञान परम धाम का है, इसको मगज में ले लेने से आप यहां पर बैठे ही घूमते रहे। के 25 पक्ष का किस तरह से नौ भूमि दसवीं कैसी है, नौ भूमि में क्या है, पहली भूमि में कैसे मूल मिला हुआ है, सुनते ही है ना। जब इसकी समझ आ जाएगी कि इस तरह से अक्षर के धाम से आगे सीधा केल का पुल, जमुना जी के ऊपर केल का ब्रिज है, पुल है, उससे पार करके लेफ्ट साइड को दक्षिण की तरफ चलना है, पाट घाट आ जाएगा। उस घाट में फिर राइट टर्न लेना है सीधा, फिर नहीं कहीं घूमना, वो सीधा पश्चिम चांदनी चौक में जो फ्रंट एरिया है परमधाम का वहां पहुंचा देगा। जमुना हाथ है लाल वृक्ष है और बाएं हाथ हरा है। अब शायद लाल और हरे का भी नहीं पता होगा, सारे सुनते रहते, व्हाट डू यू मीन माई रेड एंड ग्रीन, इसका क्या अर्थ है कि दाएं हाथ वाला जो वृक्ष है वो कैरी का है और बाएं हाथ वाला अशोक, क्योंकि शुभ काम जब होता है इधर तो कौन से पत्ते बांधते हो, आम और अशोक के ही पत्ते बांध, क्यों? परमधाम में शुभ गेट पर ये है, ये है लाल दरख्त और हरा दरख्त, वहां छोड़ दो सेंटर में सीढ़ियां। अब गिनती गिननी है भला, अपने इस घर चलना है तो गिनती गिनी, खट 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 चढ़ जाओ, कभी तो खत्म होगा कि सीढ़ियां सूढ़ियां सारी हैं परमधाम। और उसके बाद मेन जैसे ये बाहर गेट है ना, देखो होटला बना है कि नहीं बाहर, इस तरह का चौक आएगा, चौक से आगे मेन गेट है, एंट्रेंस कर लीजिए, उसके बाद एक गली छोड़ दो, 28 स्तंभ का चौक आ जाएगा। 28 स्तंभ के चौक से आगे चार चौरस हवेली, जैसे बाहर से एक रूम है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, आगे चले जाओ तो जो पाँचवा रूम है सबसे बड़ा, उसको हवेली को कुछ भी कहो, अभी आइडिया के अंदर लो, वहाँ मूल मिलावा है, गोल हवेली है, गोल चबूतरा है, मध्य में सिंहासन है, चारों तरफ घेर करके, क्योंकि चबूतरा है, 64 थंभ लगे हैं, कठेड़ा है, नीचे गिलम है, ऊपर चंद्रमा है। ये अब दूसरी भूमि में क्या है, भुलवनी का मंदिर है ताड़ उसके जो है, और उसके बाद तीसरी में प्रातः से लेके शाम के 3:30 बजे तक श्री राज जी महाराज वहीं पर रहते हैं, आरोपते हैं, अक्षर को दर्शन देते हैं, श्रृंगार होता है, वहीं दोपहर को शयन करते हैं और फिर बाद में यहीं से तैयार होकर वनों में जाते हैं। चौथी भूमि की खास इम्पोर्टेंस क्या है कि वहाँ चौथी भूमि की चौथी जो हवेली है वहाँ पर नृत्य होती है, और पाँचवीं हवेली में शयन कक्ष हैं, 12,000 मंदिर हैं, और छठी में क्या है, सुखपाल गैरेजेस हैं, और क्या, गाड़ियाँ कहाँ ठहराओगे, यहाँ स्पेशल देखो गैरेज के लिए कितना बड़ा स्थान देना पड़ता है, तो वहाँ पूरी विक्रमा दो दो मंदिर की जगह पर एक एक सुखपाल है। अब वो सुखपाल जैसे ही 3:30 बजे को करना है, अब ये देखो अलार्म गेट आता है, पड़क से खुल जाता है, लाइट जलानी पड़ती है, जैसे 3:30 बजे नहीं, सुखपाल चल के तीसरी भूमि के छज्जे के साथ ऑटोमेटिक आ जाएंगे, और फिर एक में राज्य और श्यामा जी बैठ गए, फिर एक एक में एनी टू कोई भी सुंदर आ जाए, एक रूप है, एक लीला, एक भेद है, वहाँ से उठ के वनों में जाना है, 6 घड़ी रमना खेलना है, एक गली में झीलना, एक गली में श्रृंगार, फिर वापस रिटर्न बैक, फिर उसके बाद 5वीं भूमि शयन कक्ष है, 6ठी में सुखपाल, 7वीं में हिंडोले झूले, और 8वीं में झूले, जो 7वीं में हिंडोले आमने सामने ताली बजाते हैं और झूलते समय, और जो 8वीं भूमि है वो चारों तरफ जो आके चलते हैं तो बीच में चारों तालियां आकर के जो बजती, उधर का हिंडोला आया, इधर का आया, उधर से आया, इधर के आ सके हैं, एक दूसरे के हाथ पर इधर ताली बजाते हैं, फिर जाके उधर बजाते हैं, ये आनंद 8वीं भूमि का है। और 9वीं भूमि में बैठ करके वहाँ पर बड़े बड़े सोफे और कुर्सियाँ रखी हैं, वहाँ बैठ के सारे परमधाम की शोभा को देखते हैं, और जो आकाशी है वहाँ पूर्णमासी की रात्रि को श्री राज जी महाराज के साथ हम सुख आनंद लेते हैं। ये सब कहाँ से आया, लोग निराकार से आगे का एक शब्द नहीं कहते, जब ये सुख रूहें लेती हैं तो फिर उनको संसार क्या लगेगा, क्यों नहीं वो आकर के उसका रस लेंगे, और किस तरह से, ये सब कहाँ से है, इन वाणी से, ए वाणी इन धाम की ले बिठावत निज धाम है। अब ध्यान के साथ, सबको सुख उपजे, खाली परम धाम की ब्रह्म सृष्टि को नहीं, ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी में और जीव में अंतर क्या है कि ब्रह्म सृष्टि को सुख गर्ग, जैसे परम धाम में राजीव राय लीला करते हैं, ब्रह्म सृष्टि के वास्ते वही लीला यहाँ भी राजीव राय करेंगे, तभी तो उनको यकीन आएगा। देवचंद जी ने क्या कहा कि हे धनी, यदि आप मेरे धनी हैं तो विनती एक जो वल्लभा मो अंगनानी अविधार अवधारो, तो हमें पता चले कि हम आपके अंदर मेरे खामद हैं और खामद आके मुझे मिल रहे हैं, और अगर अविधारोगे नहीं, दूर दूर रहोगे, तो फिर मैं कैसे जानूंगी कि आप मेरे खामद हैं। इसलिए ये मेहर जो है ये मोनू की आत्म पर है। और ईश्वरी पर क्या मेहर है कि अक्षातीत के माहौल में प्रेम शकवर तत्व सो सुद, अक्षर को नहीं थी, उनको इस वाणी से ही तो ज्ञान मिलेगा, और जीव सृष्टि को तो काबिले रहम है यार, पार कर दो उनको, भाव सागर से पार करके अखंड कर दें, सुखदाई सबन, सबको ये वाणी जो है सुख पहुंचाएगी, सबको सुख उपजे होए पूरन मनोरथ काम। ये तो हो गया ना आत्मा का, समझी, कहते इतना ही नहीं है, जिस घर में ये वाणी होगी, जहां सवेरे ही उठते पर्दा खुलेगा और आवाहन होगा क्या, आओ जीवाला मारे घेर, तम आओ जीवाला, इतने ही कर लेने से संसार की कोई दुख दलिद्रता है दूर होती है, गारंटी के साथ होती है। फांसी पर लगते हुए आदमी को ये वाणी उतारती है, जो रो रहे होते हैं जी हाय हमें कल उम्र कैद हो जानी है, ये वाणी के पार से जो है वो दुख दूर होते। स्वामी कहते हैं खाली रूह के लिए कौन यहां मानेगा, क्योंकि पहले क्या है देह, और कोई भी दुख होगा जरूरत होगी, लिखे हैं इनके पास, वो चुपइयों का विधिवत पारायण करके देखो, फिर देखो क्या होता है, आजमा के देखो, खाली कहने से नहीं, हथेली पे सरसों अगर ना जमाए ये वाणी तब। मरते हुए सुंदर साथ ने जो है ए वाणी का, अगर जिसने विधिवत उपकरणों का जुदा जुदा, क्यों डॉक्टर के पास जाइए तो कितनी बड़ी लेबोरेटरी होती, तो हर एक को एक ही शीशी से थोड़ा दवाई देते हैं, इसलिए जो है सब विद का ये औषध है, खाली परमधाम की आत्मा के लिए नहीं, शारीरिक भी मानसिक भी शांति इस वाणी से मिलती। और उसकी विधि विधि पाठ है, पहले चुपाई कहां से स्टार्ट होगी, ज्यारे धनी, यदि कोई भी संसार का चलता हुआ काम बिगड़ जाता है, डेड होने लगता है, विधिवत सवेरे सूर्य ना निकलने देना, आजमा के देख ले, नहा धो के 108 बार एक ही चुपाई का पाठ कर लेना, राज्य के सामने जल रख देना, जल पी लेना, बस हो गया। और 40 दिन के अंदर देखो फिर परिवर्तन क्या होता है, फिर कोई फ्रेंड दोस्त है वो नहीं अभी सुंदर साथ बना, उस पर दया करना चाहते हो तो दो चुपइयों का पाठ आप करना, जल उसको पिलाते रहना, तई प्रदक्षिणा अति घनी करूं दंडवत प्रणाम, सौ साथ न मनोरथ पूर्ण जो मारा धनी शरीर, मन न मनोरथ पूर्ण की दा मारा अनेक वार, वारने जाए श्रंद्रावती मरा आत्म, और उससे घोर कष्ट मौत का भी सामना करना पड़ रहा हो तो फिर बालाजी बिहारस वाले 5-6 फिकरण विधिवत उठ के रोज 21 बार पढ़ो, फिर बात करो क्या है। स्वामी जी कहते हैं इससे क्या होता है, होवे पूर्ण मनोरथ काम, इन वाणी से होता है नजर पड़े बीच बक्का, इस वाणी के चितवन से यहीं पर बैठे बैठे ये कोई संसार का मन काल्पनिक वो नहीं है जो हिप्नोटिज्म करते हैं, और ये है वो स्वामी जी कहते हैं प्रैक्टिकल। अब आपने आजमाना है ना, आओ 4 जून से फिर आके देखो, और फिर आती बार हमारे से बात करना के वाकई जो आज आपने ना हम परम धाम जानते क्या है, इस वाणी से ही जो चित्तवनी स्वामी जी ने बताई है उसको विधि से आप विधिवत कराएंगे, फिर देखना कि यहाँ बैठे हम परम धाम में घूमते हैं कि नहीं घूमते, वो काल्पनिक है या हकीकत है, वो उसका अनुभव फिर करना, आपको बताएंगे कैसे होता है। ए रस ए रसना श्यामा जी की और पिलावत रस रब का, अर्थात ये वाणी कहने वाले कौन है? श्यामा जी है। और इसके अंदर रस किसका है? अक्षरा तीत जो हमारे धाम के धनी है, उनका सारी लीला जो परम धाम का रस का मतलब जो परम धाम के हमारे सुख हैं, लीलाएं हैं, वो इस वाणी के द्वारा ही हमें मिले हैं। जो धाम अंदर की, जो परम धाम के अंदर की विहार की मजकूर है, केव नौ भूम दसवीं आकाशी के अंदर श्री राज्य महाराज अक्षरा तीर्थ क्या लीला करते हैं और आत्माएं श्री राज्य के साथ क्या व्यवहार करती हैं, ये सारा इस वाणी में है। सो अक्षर को शुद्ध नहीं कहते हैं भाई, ये तो संसार, ये अब हम कहां बैठे हैं? माया में बैठे हैं कि परम धाम में बैठे हैं? तो अंदर तो जीव है ना, तो अक्षर के एक पलक से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और करोड़ों ब्रह्मांडों में अरबों खरबों जीव बनते हैं। तो जिस चीज का ज्ञान अक्षर को नहीं, वो बेचारे तरदेवा आदिनेन ब्रह्मा विष्णुमेश कहाँ से ले क्या? तो जो उनके पास नहीं है और उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं तो गुरुजन कहाँ से लेके हैं? तो जो गुरुओं को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ वो आगे दुनिया को कैसे बता दे? तो स्वामी जी कहते हैं सुंदर साहब जी, जो धाम अंदर की बिहार की मजकूर जो अक्षर ब्रह्म को नहीं है, वो तुम्हारे जीवों के ऊपर बैठी हुई आत्माओं के कारण मुझे परम धाम के सारे दरवाजे रस हकीकत जो है वो भी खोल के बतानी पड़ी, वो सब इस वाणी में है। सो अक्षर को शुद्ध नहीं जो अंदर की जहूर है। अब ध्यान के साथ आज स्टेप बाय स्टेप नीचे, जो अक्षर को शुद्ध नहीं सो त्रैगुण पास क्यों होए, बराबर, जो अक्षर को शुद्ध नहीं सो त्रैगुण पास क्यों होए, सो सब इन वाणी में सपने नजर पहुंची सोए। ध्यान के साथ, अब वो परम धाम का वो ज्ञान, वो लीला आनंद और श्री राजे महाराज अक्षरातीत के परम धाम की, जो अक्षर ब्रह्म को पता नहीं और वो कहाँ से लाते, वो कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ से लाते? तो स्वामी जी कहते हैं वो सब तुम्हारे जीव जो संसार के, उनकी भी नजर अब जब बैठ के विधिवत चित्तन करेगी तो क्या देखेगी? परम धाम मूल मिलावा। और रोज वर्णन नहीं करते हो श्री राज श्री ठकराणी जी प्रथम में विराजमान है, श्रृंगार का वर्णन करते हो, श्यामा जी की साड़ी का वर्णन करते हो, राजी की पाक का वर्णन करते हो, अक्षर जानता ही नहीं है श्यामा जी की साड़ी कैसी। हमारे जीव यहां बैठ के रोज पढ़ते, नीली लाई को चलनी है, कन चुकी है, सब कुछ है, श्रृंगार है, जरा जरा वर्णन राजी का करते हैं। जो अक्षर को सुनने वो तुम्हारे जीवों को मिल रही है, क्यों? इसके अंदर परम धाम की आत्म बैठे, ये कारण है। इसलिए राज्य महाराज इतने लाड से फिदा हैं अपनी रूहों के ऊपर कि अर्श जैसे अभी खजाना इलाही का मुआसे मोमनों के, ताकि किसी तरह से इनको पहचान हो और मिथ्या माया ये छोड़े। जो अक्षर को शुद्ध नहीं सो त्रैगुण पास क्यों होए, सो सब इन वाणी में सुपने नजर पहुंची सोए। अब ध्यान देना, नजर नाबूद जीव की, एक जीव की औकात क्या है? बनता मिटता एक पल के अंदर, सो सपने में रल जाए, जीव जन्मता है और यहीं पर ही मर जाता है, नींद उड़े उड़ जाते है, एक मिनट में प्रलय में लाख नाश हो जाते हैं, शुद्ध न रह वेता है, उसको पता भी नहीं रहता कि मैं आया कहाँ से था और बना कहाँ हूँ और मिट कहाँ गया हूँ। ध्यान देना, तीन नाबूद की नजर, कहते वो जीव जो इतना बड़ा है उसको जो है आत्म के संबंध से, वो जीव अब यहाँ बैठ के सब देवी देवों को छोड़कर राज्य के अंगना का भाव लेकर के परम धाम के सुख लेता है, जो अक्षर को नहीं। ए बल है इस वाणी का, अक्षर ठौर स्वरूप की इन वाणी से देखे परम धाम देखे और अक्षर का ठिकाना देखे और सैभी की हकीकत को जाने, जहां जबरा एल रहा। अब समझे कहते जहां पर राज्य में राय का जोश की शक्ति भी आगे नहीं चलेगी, जीव हमारा वहां पहुंच जाता है। चल सक्या ना आगे, इन वाणी की बरकतें जमुना सातों घाट पहुंचे। इस वाणी की कृपा शक्ति से हम कहां पहुंचते हैं, अक्षर से आगे यमुना जी के ऊपर केल घाट, फिर बाया तो घूमते हैं तो सात घाट आता है, फिर आगे चलते हैं तो चांदनी चौक आता है। अमोल मिलावे तक पहुंचने का जरा जरा वर्णन, श्री राजीव राय का स्वरूप क्या है, कोई बताए दुनिया में पार परमात्मा का क्या स्वरूप है, एक अंग का वर्णन कोई करके बताए, श्रृंगार क्या है, क्या लीला है, कहाँ रहता है, धाम क्या है, स्वामी जी के सब इस वाणी में। चल सक्या ना आगे, इन वाणी की बरकतें जमुना सातों घाट पहुंचे। आगे रसूल तखत पर ध्यान देना कि अक्षर की आत्म भी गई लेकिन अक्षर धाम से आगे चल सकी नहीं, फिर रफ रफ का तख्ता ये निजबुद ये वाणी आई तो अक्षर की आत्म भी परम धाम पहुंची। जो उलंग आगे चले देखा धाम ठौर जेठे, तब अक्षर की आत्म भी अखंड परम धाम में मूल मिलावे में पहुंची। राज्य का स्वरूप श्यामा जी का सब आत्मा को बैठे देखा। इन जुबान के स्वर सुनते, अब जो सुंदर साथ पाठ करने बैठेगा और बोल बोल के पढ़ेगा, गुंगा पाठ नहीं करेगा, उसके लिए गुंगा पाठ लेने वाले कुछ भी नहीं होगा। पाठ भी कर लोगे, पाठ भी यदि कर लोगे, ध्यान दो सुंदर साथ जी, तो कुछ लाभ उस पाठ का होने वाला नहीं। आपने घर पाठ रखवाया,